Шилэлж. Шилэлж. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्षितिज कार्यक्रम लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। स्वीकार कीजिए मैं शशि डुकन का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, क्षितिज कार्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं, विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अनेक भारत और भारत से बाहर विदेशों में हिंदी और हिंदी के अध्ययन और अध्यापन में जो हिंदी प्रेमी जुड़े हुए हैं, उनसे हम साक्षात्कार कर आप तक पहुंचाते हैं। इस तहत विश्व हिंदी सचिवालय में 11 फरवरी को वहाँ पर 18वां जो है वो स्थापना दिवस आयोजित किया गया, जिसमें अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो कि एक दिवसीय जो कार्यक्रम था, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए हुए वक्ता जो थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में जो है बड़ी शिद्दत के साथ अपनी उपस्थिति दी। और बताती चलूं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा कि हिंदी साहित्य के मध्यकालीन कवि और आधुनिक काल के छायावाद कवियों का एक झलक उस कार्यक्रम के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जो लेखक और कवि हमारे HSC के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके काव्यों पर एक दृष्टि डालना, और भारत और भारत से आए हुए विदेशी वक्ता जो हैं, उनसे उनके अनुभवों को साझा करना, हिंदी साहित्य को जानना, इन सब विषयों पर अनेक गतिविधियां जो हैं उस दिन आयोजित की गई। इस तहत हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है, हमारे साथ भारत से एक अद्वितीय मुख्य अतिथि डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जी जो हैं इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए गए। मैं उनका एक परिचय आपको देना चाहूँगी। वैसे तो उनका परिचय जो है देना मेरे लिए इतने कम समय में संभव नहीं होगा, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से MA हिंदी हैं, PhD हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो कि भारत में स्थित है, और उनका अनुभव तो बहुत लंबा है, सेनानिवृत्त हैं, और हिंदी विभाग जवाहरलाल नेहरू महा विश्वविद्यालय पोर्ट ब्लेयर विजयपुरम अंडमान में आजकल वे अपनी सेवाएं हिंदी को लेकर जो हैं वो दे रहे हैं। और प्रकाशन में अगर मैं कहूँ तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा उनकी कई प्रकाशित पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हैं, जैसे रत्नाकर, नंदास, परमानंद दास, अंडमान का हिंदी साहित्य, अंडमान तथा निकोबार की लोक कथाएं आदि आदि अनेक उनकी पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हैं, और वे अनेक सम्मानों से भी सम्मानित हैं। विश्व हिंदी सम्मान उन्हें प्राप्त है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचन पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, रामविलास शर्मा सर्जना पुरस्कार आदि आदि अनेक, लंबी लिस्ट है, मैं नहीं ज़्यादा उसमें जाना चाहूँगी। कहने का तात्पर्य है कि जितना भी परिचय उनका दूँ तो वो कम ही होगा। आप स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जी, आपको हमारा सादर नमन, मैं आपका तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ।
नमस्कार, धन्यवाद।
सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप मॉरिशस में इसी उद्देश्य से आए कि हमारा जो 18वां विश्व हिंदी सचिवालय का स्थापना दिवस था, उसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में आए। मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं के साथ आप यहाँ के कुछ अनुभव जो है, जो साहित्य को लेकर एक कार्यक्रम में जो आयोजित किए गए, थोड़ा उनके बारे में, यहाँ के साहित्य लेखकों के बारे का साझा आपके साथ हुआ, उनके बारे में कुछ आप बताते तो अच्छा होता।
महोदया, विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया था मुख्य भूमि भारत गोरखपुर से, तो यह अपने आप में मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मेरे लिए उत्साहित करने वाला यह एक आयोजन था जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया। जहां तक आप अनुभव की बात कह रही हैं, तो विश्व हिंदी सचिवालय के स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया खासकर, और आप जानती हैं, आपने कहा भी कि भक्ति काल के कवि सूरदास के विनय और भक्ति के पदों पर आधारित कार्यक्रम था तथा छायावाद के कवियों सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और निराला की कविताओं पर केंद्रित कार्यक्रम था। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि सूरदास के पदों को नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया, गीत के गा करके प्रस्तुत किया, और सबसे बड़ी बात है कि हाव भाव और संकेतों के माध्यम से जो सूरदास कहना चाहते थे उसको विद्यार्थियों ने अभिव्यक्त किया। और इसी तरह छायावाद के कवियों ने जो कविताएं लिखी हैं, जैसे जागो फिर एक बार निराला की कविता, महादेव वर्मा की कविता विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, और इस तरह से सुमित्रानंदन पंत की कविता दुर्द झरो जगत के जीर्ण पत्र, तो इन कविताओं का उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, प्रस्तुति की। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रशंसा करता हूँ उन शिक्षकों का जिन्होंने इसे सिखाया, जिन्होंने प्रस्तुति में सहयोग दिया। तो इस तरह से अच्छा भाव ये होना चाहिए कि जो सूरदास ने या छायावाद के कवियों ने जो कहा है वो विद्यार्थियों तक पहुंचे, तो उसको पहुंचाने की कोशिश की गई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूँ जी।
बहुत अच्छा। और इसी माध्यम में एक सबसे अच्छी बात रही हमारे छात्रों के लिए, यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो भी सूरदास के काव्य में,
हाँ अपने आप में अच्छी थी। बहुत सारे पद थे, मैया मोहिम मैं नहीं माखन खायो, तो इस तरह के जो पद हैं
वो चित्रित थे,
हाँ चित्रित थे, चित्र बना करके और उसको प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया गया।
मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप भारत गोरखपुर से हैं और आजकल अंडमान में हैं?
नहीं, मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ।
अच्छा, वहाँ से। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप साहित्य से जुड़े रहे, आपका साहित्य वहाँ पर बच्चों के लिए साहित्य जो है किस तरह था, थोड़ा भारत के बारे में आप हमें बताएं का अनुभव।
जी मैडम, मैं समझ रहा हूँ कि आप ये जानना चाहती हैं कि आप भारत गोरखपुर
में हैं और अंडमान में कैसे और फिर वापसी आपकी।
जी मैं समझ गया आपकी बात, तो इसीलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जन्मभूमि मेरी कुशीनगर है और मेरी कर्म भूमि पोर्ट ब्लेयर, आज जिसे विजयपुरम कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, तो मेरी कर्म भूमि रही है। मैंने लगभग 38 वर्षों तक वहाँ अपनी सेवाएं दी हैं और मेरी जो भी उपलब्धियां हैं वो लगभग वहीं की हैं
और उसी से उनको आपको सम्मानित किया गया।
विश्व हिंदी सम्मान, जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था भोपाल में, तो उसमें मुझे विश्व हिंदी सम्मान दिया गया था। और मैंने सारी किताबें जो लिखी हैं, मैंने जिनकी चर्चा आपने की, तो वो अंडमान निकोबार में ही मैंने लिखी हैं। और वहाँ का जो परिदृश्य है मैडम, मैं ये बहुत ही आदर भाव के साथ ये कहना चाहूँगा, सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि जो पृष्ठभूमि मैं यहाँ मॉरिशस में देख रहा हूँ, लगभग वही परिदृश्य वहाँ का भी है।
अच्छा।
वातावरण भी लगभग वही है।
अच्छा।
पोर्ट ब्लेयर अंडमान की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी समुद्र के बीच में कमल की तरह, हाँ कमल की तरह खिला हुआ है, और ये मॉरिशस भी समुद्र के की गोद में कमल की तरह खिला हुआ ये द्वीप है, तो ये काफ़ी समानताएं हैं। और भाषा की दृष्टि से चूंकि यहाँ पर भी बहुभाषिकता है और वहाँ अंडमान निकोबार में भी बहुभाषिकता है, वहाँ भी कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन वो अधिकांशतः जो है वो मुख्य भी भारत वाली भाषाएं होती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, और यहाँ फ्रेंच और क्रियोल या अन्य जो सारी भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि वातावरण की दृष्टि से और भाषिक विविधता की दृष्टि से, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से काफ़ी समानताएं हैं। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि जैसे मैं पोर्ट पर पहुँच गया हूँ, तो मैं इस धरती का वंदन अभिनंदन करता हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत धरती है।
डॉक्टर त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लंबे हिंदी साहित्य के लंबे अनुभव से जुड़े हुए हैं, क्या बच्चों में आज साहित्य में कहीं रुचि कम होती नज़र आपको दिखाई देती है? क्या भावी योजनाएं उनके लिए हम रख सकते हैं ताकि वो साहित्य से जुड़ें? क्योंकि कहते हैं कि हमारा साहित्य जो है, हमारा मतलब एक हिंदू साहित्य जो है, हिंदी साहित्य जो है, वो संस्कृति परंपराओं की धरोहर है। बाकी जो अन्य देशों की जो क्या साहित्य होता है वो सिर्फ एक रोजी रोटी का वो होता है।
नहीं, लेकिन मतलब मैं ऐसे नहीं मानता। अच्छा। हर भाषा अपनी संस्कृति की संवाहिका होती है,
ये तो बिल्कुल सही है।
तो जो भी भाषा जिसमें कुछ लिखा जाता है तो वहाँ का समाज मौजूद रहता है,
ये बिल्कुल आपने सही कहा।
तो अब कल्पना कीजिए, हिंदी का जो साहित्य है उसमें जो समाज प्रतिबिंबित होता है, उसकी जो झलक है, उसको हमें बचा करके रखना है, वो परंपराएं, वो संस्कार, वो रीति रिवाज और वो जो मानवीय मूल्य हैं उनको बचा करके रखना है। और ये बचाने का काम कौन करेगा? साहित्य करेगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य ही उसको सुरक्षित रखता है पीढ़ी दर पीढ़ी। आप कल्पना कीजिए, अगर वाल्मीकि रामायण हमारे पास उपलब्ध नहीं होता तो हम राम के चरित्र को कैसे समझ पाते, ठीक है ना। महाभारत अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं होता तो हम कृष्ण और कृष्ण के युग से संबंधित जो विभिन्न बातें हैं, जैसे सद्वृत्तियां असद्वृत्तियां, सुरत्व असुरत्व जो भी है, उसको हम कैसे समझ पाते?
बिल्कुल, मैं तो, मेरा कहने का तात्पर्य यही था,
आप जो कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूं,
कि मानवीय मूल्यों से जो है जुड़ा हुआ है। और जबकि हमारे आज की नई जनरेशन जो है वो कुछ ना कुछ साहित्य में उतनी रुचि नहीं दिखा रही है।
हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा, इसका कारण यह है, आप तो यह बात मानती होंगी कि आज कवियों की संख्या बहुत है।
बिल्कुल आपने सही कहा।
आज 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 घर घर आप दो तीन घर छोड़ करके एक कवि पा जाएंगे,
बिल्कुल
एक साहित्यकार पा जाएंगे, लेकिन उस उन रचनाओं में गहराई नहीं है, गंभीरता नहीं है।
ये बिल्कुल
वो एक प्रशंसा पाने के लिए, महत्वाकांक्षा दर्शाने के लिए ये लोग लिख रहे हैं, तो डेप्थ होनी चाहिए, जो गहराई होनी चाहिए वो गहराई नहीं है। लेकिन लेखन बंद नहीं हुआ, लेखन चल रहा है।
ये आपने सही कहा।
इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि हमें प्रेरित करना है कि आप कम लिखो लेकिन महत्वपूर्ण लिखो। ये महत्वपूर्ण लेखन नहीं हो रहा है। और जो नई पीढ़ी है मैडम, चूंकि आज की जो भाग दौड़ है, आपाधापी है और भूमंडलीकरण है और इसके जो अनेक जो विद्रूपताएं हैं, अच्छी बात भी है, मैं ये नहीं कहता कि सब खराब है, लेकिन जो विद्रूपताएं हैं उनकी वजह से भागम भाग बहुत हो गई है। और हर आदमी चाह रहा है कि हम अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें, हम कहीं सेटल हो जाएं, तो वो भाग रहा है और इसके लिए वो साहित्य की ओर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। शायद आप यही कहना चाहते हैं कि उसको कैसे साहित्य की ओर उन्मुख किया जाए, प्रेरित किया जाए। हाँ। तो देखिए ऐसा ना, साहित्य तो अंतः प्रेरणा की बात है, वो तो हृदय से उपजता है। तो हम किसी को प्रेरित करके साहित्य नहीं लिखवा सकते, और जो कुछ भी लिखवा लें तो ठीक है ना। हाँ। तो जब तक वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, तो वो जब तक भीतर से नहीं निकलेगा तब तक कुछ बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए हम प्रेरित नहीं कर सकते हैं। हाँ, शायद आप यह भी कहना चाहती हैं कि हो सकता है कविता पर संकट के बादल मंडरा रहे हों। मैडम, ये कहना चाहता हूँ कि कविता पर संकट के बादल तो हैं, लेकिन कविता बहुत बड़ा काम कर रही है और शब्द की सत्ता समाप्त होने वाली नहीं है। शब्द जीवित रहेंगे, जब तक हम मानव जीवित रहेगा तब तक शब्द भी रहेंगे और साहित्य में रचना होती रहेगी।
यही चाहती हूँ कि जो आपने बात कही, ये बात जो है वो सार्थक हो और हमारे श्रोताओं तक जुड़े, और नई नव युवक जो हैं, जो कि साहित्य से थोड़े अनमुख हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदी साहित्य से जुड़ें, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी धरोहर जो है उसको वो बचा कर रखें। और मैं आपके लिए शुभकामनाएँ प्रस्तुत करती हूँ इस मंच से, और हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
अंत में मैं यही कहना चाहूँगा मैडम कि जिस तरह यहाँ हिंदी या अन्य भाषाएं विकसित हो रही हैं, उसमें अच्छा लेखन हो और ताकि समाज हमारा समुन्नत हो सके। साहित्य का काम है बेहतर मनुष्य और बेहतर समाज की स्थापना
करना।
इसमें हमारा जो यहाँ का साहित्य या कहीं का साहित्य है वो योगदान दे, यही मैं चाहता हूँ और मेरी यही कामना है। मॉरिशस वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे श्रोताओं के लिए आए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आपकी जो दुआएं हैं वो मॉरिशस के लिए फलीभूत हों, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं और हमारे श्रोताओं के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से अनुमति चाहेंगे और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने तकनीकी सहयोगी यूसुफ का। अपने एक और कड़ी तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
शितिज।